మనము భీష్మ భూతలే స్వయం రూప కదామయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథానృతంతం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామిని నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత్ గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్. Then we will discuss. Okay, dikhai de raha hai sabko.
Yes, bro.
Yes, Prabhu.
So this is today's topic, etiquette within relationships. Last two weeks, शायद दो या तीन क्लासेस में हमने वो कंप्लीट किया था, टीचिंग एंड बिहेवियर, जनरल बिहेवियर एंड पर्सनल हैबिट्स. तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अलग अलग प्रकार के जो संबंध है उनके बीच में क्या एटिकेट होना चाहिए, एटिकेट विद इन रिलेशनशिप. क्योंकि जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो भक्तों के बीच में कुछ भक्त सीनियर होते हैं, कुछ भक्त हमसे जूनियर होते हैं, कुछ हमारे साथ वाले भी होते हैं, कुछ नए भक्त भी होते हैं और कुछ अभक्त भी होते हैं. तो इन सबके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो ये टॉपिक है. तो ये टॉपिक एक्चुअली वैष्णव एटिकेट का बहुत लॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हम स्पिरिचुअल मास्टर से व्यवहार और गुरु के गॉड ब्रदर्स के साथ व्यवहार, सीनियर्स जूनियर्स इक्वल्स सबके साथ व्यवहार देखेंगे. तो मुझे लगता है एटलीस्ट 3-4 क्लासेस तक ये टॉपिक चलता रहेगा, 3-4 हफ्ते तक. पहला पॉइंट है, वैष्णव सोसाइटी को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक उसकी संरचना की गई है, जहाँ पे जूनियर हमेशा सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं और सीनियर हमेशा जूनियर को प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करते हैं. ये एक जनरल एटिकेट है कि कृष्ण भक्ति में वैष्णव एटिकेट तो नहीं, सामान्य एटिकेट भी है, भारत के वैदिक कल्चर का एटिकेट है कि जूनियर्स हमेशा सीनियर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति का रिस्पेक्ट करते हैं, और सीनियर्स जो है वो जूनियर्स को आशीर्वाद देते हैं और स्नेह करते हैं. और ये बहुत रिफाइंड कल्चर है, भारत में हमेशा ये कल्चर पाया जाता था, वर्णाश्रम में इनहेरेंट था ये कल्चर. एक नीति शिक्षा में आता भी है, एक श्लोक आता है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवया चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्. इसका मीनिंग है कि अभिवादन शीलस्य, अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, अपने आप को झुका के सामने वाले व्यक्ति को प्रणाम करना, उसको अभिवादन. शीलस्य, शील का मतलब कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए. और तीसरा है नित्य वृद्ध उपसेवया. उपसेवया मतलब उनके पास बैठ के उनको जो भी आवश्यकता हो उस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए. वृद्ध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं आयु के द्वारा, कुछ लोग वृद्ध हो सकते हैं ज्ञान के द्वारा, कुछ लोग भक्त हो सकते हैं भक्ति के द्वारा. तो हर प्रकार से जो भी वृद्ध लोग हैं उनका सेवा करनी चाहिए. और अगर हम ये करते हैं तो चार वस्तुओं में बढ़ोतरी होती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो सेवया चत्वारि तस्य वर्धन्ते। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी चार वस्तुएं हमेशा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश बल। आयु मतलब उसकी सामान्य जीवन आयु बढ़ती जाती है, उनके वृद्धों के मतलब बड़े लोगों का सम्मान करने से उसकी जीवन आयु बढ़ जाती है। विद्या ज्ञान में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, और बल शारीरिक बल मानसिक बल आध्यात्मिक बल इन सब में वृद्धि होती है। तो ये वैदिक कल्चर का प्रभाव है। वैदिक कल्चर में छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीजें आती हैं, परंतु जैसे जैसे लोग वैदिक कल्चर भूलते जाते हैं, मॉडर्न चीजों में आते हैं, तो मॉडर्न चीजों में इसको नहीं सिखाया जाता है। आजकल आप देखेंगे पाश्चात्य देशों में टीचर स्टूडेंट्स को डांट भी नहीं सकता है। अमेरिका में ऐसा नियम है कि छोटा बच्चा पुलिस को बुला सकता है, अपने मम्मी पापा को भी अरेस्ट करा सकता है। अगर माँ ने उसको मार दिया तो वो जाके पुलिस को बुलाएगा और पुलिस माँ को लेके जेल जेल में लेके जाएगी। इसी तरह से टीचर्स के लिए नियम है, टीचर्स स्टूडेंट्स को नहीं मार सकता है, स्टूडेंट का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये वैदिक कल्चर के एकदम अपोजिट है, वैष्णव कल्चर के अपोजिट है। वैष्णव कल्चर में सेंसिटिविटी पाई जाती है संबंधों के बीच में, जूनियर और सीनियर के संबंधों में हमेशा सेंसिटिविटी पाई जाती है। वैष्णव सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया गया है वर्णाश्रम के आधार पे, और वर्णाश्रम मतलब वर्ण और आश्रम के आधार पे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। चार वर्ण जो होते हैं और चार आश्रम, इसके आधार पे वैष्णव सोसाइटी। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैष्णव सोसाइटी, तो इसका मतलब है वर्णाश्रम सोसाइटी। वैष्णव सोसाइटी और देवी वर्णाश्रम सोसाइटी में कोई अंतर नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि वर्णाश्रम स्थापित नहीं है, क्योंकि देवी वर्णाश्रम कलयुग के प्रभाव से खत्म हो गया है। इसलिए हम जो भी वैष्णव भक्त हैं उनको भी हम देखते हैं उनके जीवन में कठिनाई होती है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं कि जो पूरा सिस्टम आध्यात्मिक कल्चर के अपोज में है। उस सिस्टम में रह के हमें एक्सपेक्ट करना किया जाता है कि हम भक्ति करेंगे, बहुत कठिन होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए कि मंदिर में जो भक्त रहते हैं वो तो ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मंदिर का कल्चर अलग है, परंतु आप देखिए मंदिर की बाउंड्री के बाहर जाइए तो सेम प्रिंसिपल फॉलो करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम स्थापित नहीं है। अगर वर्णाश्रम होता तो हर व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से सिंपल लाइफ जी के भक्ति कर सकते हैं, परंतु अभी इस्कॉन के भक्त स्ट्रगल करते हैं, जॉब करने के बाद भक्ति के बेसिक चीजों को करने में स्ट्रगल करते हैं। 16 माला, 4 नियमों का पालन, शास्त्रों का अध्ययन, लेक्चर सुनना, ये सब उनके लिए संघर्ष हो जाता है, और प्रचार करना बाकी सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो वैष्णव सोसाइटी तभी अच्छे से स्टेब्लिश हो सकती है जब हम देवी वर्णाश्रम सोसाइटी को स्थापित करें। उसको स्थापित करने का क्या तरीका है? देवी वर्णाश्रम का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसके ऊपर वर्णाश्रम स्थापित होता है, क्योंकि मनुष्य को अपनी नीड्स को कम करना होगा। अभी हम सभी लोग बड़ा बड़ा जॉब इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम सभी को नीड बहुत ज्यादा है, हमें लगता है कि ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा एंजॉय करेंगे, और सिटी में एक्सपेंडिचर भी होता है। इसलिए वैदिक शास्त्र बताते थे कि सिटी से ज्यादा अच्छा विलेज लाइफ होता है। सामान्यतः आजकल लोग गांव में जाना पसंद नहीं करते, परंतु वैदिक कल्चर जो है वो गांव का कल्चर है, सिटी का कल्चर जो आर्टिफिशियल है। सिटी की जो भी वस्तुएं हैं सारी आर्टिफिशियल है, उसमें कुछ नेचुरल नहीं है। हम ये भी भूल चुके हैं कि खरीफ की फसल, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। ये भी भूल चुके हैं कि गाय से दूध कैसे निकाला जाता है। इतना ज्यादा हम नेचर से दूर चले गए हैं, ये तो छोड़ दिए, उससे भी ज्यादा हम भूल चुके हैं कितने कितने दिन तक हम आसमान में तारे नहीं देखते हैं, क्योंकि नीचे इतनी सारी लाइट रहती है, ट्यूबलाइट और इतनी सारी लाइट जलती रहती है, ऊपर आसमान में देखते नहीं। मुझे एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं पता नहीं 1 महीने बाद आज ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ। तो कितना आर्टिफिशियल लाइफ है, हम नेचर से पूरी तरह से दूर चले गए, और इसी कारण से भक्ति में प्रोग्रेस करने में भी हमें बहुत कठिनाई होती है और बहुत स्ट्रगल होता है। और दूसरी तरफ हमारा जॉब इस प्रकार से है कि 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक जॉब करते हैं, तो फिर कैसे भक्ति होगा? इसलिए वैदिक शास्त्र बताते हैं कि सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है तो हमें प्लान करना चाहिए कि जीवन में एक समय आए जब हम इस सिटी के आर्टिफिशियल कल्चर को छोड़ के विलेज कल्चर में जाएं, जहां कि हम भक्ति को समय दे सकें। हो सकता है अभी हम किसी तरह से फंसे हों, परंतु हमें प्लान करना चाहिए कि लाइफ टाइम हम इस प्रकार से घिसट घिसट के भक्ति करना नहीं चाहते। एक समय आए जब हम भक्ति को पूरी तरह से प्राथमिकता दे सके, क्योंकि अगर एक ही लाइफ है हमारे पास, अगर प्राथमिकता नहीं दिया जिंदगी के लास्ट तक इस तरह से करते रहे, तो फिर श्योर है कि अगला जन्म हमारा यही होने वाला है। तो इसलिए वैष्णव सोसाइटी आइडियली स्ट्रक्चर्ड होती है वर्णाश्रम के द्वारा। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभुपाद जी ने तो अमेरिका में बहुत सारे भक्त बनाए, उस समय तो वर्णाश्रम नहीं था, परंतु प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी स्तर से भक्त बना सकते थे। अगर प्रभुपाद जी ने भक्त बनाए बहुत बड़ी बात है। अभी हम देखते हैं कि अभी भक्त नहीं बन रहे हैं उतने भारत के बाहर, भारत में भक्त बन रहे हैं, परंतु अमेरिका में आप जाके देखिए, आप में से जो भक्त अमेरिका गए होंगे, कितना कठिन है अमेरिका में प्रचार करना, लोग आते ही नहीं है प्रोग्राम में, जो भारत के लोग हैं वही आते हैं, अमेरिकन पॉपुलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम वो कल्चर स्थापित नहीं हुआ है तो उस कल्चर तो लोग भक्त बनेंगे परंतु बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अभी हम देखते हैं, हम जन्माष्टमी पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर लोगों को सिक्स सेशन कराते हैं, फिर धीरे धीरे घिसते 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 1 साल में कोई व्यक्ति एक दो माला करना चालू करता है, जबकि अगर कोई नेचुरल लाइफ में रहता है तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास समय है और जीवन बहुत आसान है जीना। तो हम सबको पता है कि एक स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्थान है जो मॉडर्न आर्टिफिशियल कल्चर है, परंतु हम सभी इसके अंदर रह रहे हैं, और रहते रहते हम हमारी खुद की इच्छाएं ऐसी हो गई कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और उसके कारण से हमें डर लगता है जब भी हम सोचते हैं। परंतु जैसे जैसे भक्ति में एडवांस करते हैं, प्लान करना चाहिए कि हम लाइफ को कैसे सिंपल कर सकें और कैसे मृत्यु के पहले शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। तो वैष्णव सोसाइटी का ये स्ट्रक्चर है वर्णाश्रम स्ट्रक्चर, और गॉड ब्रदर्स के बीच में भी सीनियोरिटी के अलग अलग कंसिडरेशन हैं। जैसे सीनियोरिटी के कुछ कुछ कंसिडरेशन होते हैं, एक कंसिडरेशन तो होता है जिसका दीक्षा पहले हुआ है उसको सीनियर बोला जाता है, जिसने पहले दीक्षा लिया है गुरु से उनको सीनियर बोला जाता है। दूसरा कंसिडरेशन होता है जो उम्र में बड़ा है उसको सीनियर बोला जाता है। तीसरा होता है जो कृष्ण भक्ति में पहले आ गया उसको भी सीनियर बोला जाता है। चौथा होता है जो टेंपल अथॉरिटी है, या जो टेंपल लीडर्स हैं, या सन्यासी हैं, या ऊपर के आश्रमों में हैं, उनको सीनियर बोला जाता है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कृष्ण भक्ति में हमसे एडवांस है उसको सीनियर बोला जाता है। परंतु इसमें समझना कठिन है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कृष्ण भक्ति में कौन एडवांस है। कृष्ण भक्ति तो हार्ट की इंटरनल चीज है, तो बाहर से पता नहीं चलता है। इसलिए सामान्यतः सोशल कंसिडरेशन हम फॉलो करते हैं कि जो सीनियर है, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे है, उनको हम सीनियर मानते हैं। परंतु फाइनल जो कंसिडरेशन है वो हमेशा यही होता है कि कौन सा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में कितना एडवांस है, वो उसका फाइनल कंसिडरेशन होता है। तो आध्यात्मिक गुरु के जो गॉड ब्रदर्स हैं उनका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना गुरु का सम्मान करते हैं। सन्यासियों का सम्मान हमेशा आध्यात्मिक गुरु के सम्मान करना चाहिए। जो सन्यासी है वो नेचुरली गुरु है, आज नहीं तो कल आगे जाके वो आध्यात्मिक गुरु का पद स्वीकार करने वाले हैं, तो सन्यासी को हमेशा गुरु के जैसा सम्मान देना चाहिए। वैष्णव सोसाइटी में हर व्यक्ति विनम्र बनने का प्रयास करता है। जितना कोई व्यक्ति एडवांस होता है उतना ही वो ज्यादा विनम्र बनता है। तो ये एक लक्षण है, इस लक्षण के द्वारा हम भक्तों को देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं, भक्तों को भी जज नहीं करना चाहिए, पर एटलीस्ट हमें पता चल सकता है जो भक्त बहुत विनम्र होता है दैट मीन्स वो उतना एडवांस है। भौतिक संसार में विनम्रता को एक कमजोरी माना जाता है, लोग बोलते हैं कि विनम्रता मतलब कमजोर है, कमजोर लोग विनम्र होते हैं। आध्यात्मिक संसार में जो व्यक्ति विनम्र होता है उसको उतना एडवांस माना जाता है। जो महान महान एडवांस भक्त हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि मल में जो कीड़ा होता है उससे भी ज्यादा पतित हूं, इस प्रकार से वो अपने आप को समझते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल लिखने के लिए लिख दिया, वो समझते भी हैं उस प्रकार से, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। इसी तरह से कुछ कुछ आचार्य थे, जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा जा रहा था तो उन्होंने राइटर से बोला था कि आप मेरा नाम मत लिखना, मेरा नाम का कोई उल्लेख नहीं करना। यद्यपि वो लोग चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, परंतु उन्होंने बोला मेरे नाम का उल्लेख मत करना, क्योंकि मैं इतना पतित हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बीच में मेरा नाम कहाँ से आ सकता है, इसलिए मेरे नाम का कोई उल्लेख मत करना। इस प्रकार से कुछ कुछ आचार्यों ने बोला था, इसलिए उनका नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आता है। तो ये विनम्रता का लक्षण है कि व्यक्ति जितना एडवांस है उतना ज्यादा वो विनम्रता को प्राप्त करता है, और जो जितना ज्यादा कनिष्ठ है उसको लगता है कि वो तो बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा भक्त है। भक्ति की डेफिनेशन इस प्रकार से ही आती है। जो नए भक्त होते हैं वो मंदिर में आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि बस मैं हूं और भगवान है, बीच में कोई नहीं है, बीच का मीडिएटर नहीं चाहिए हम। और बहुत सारे लोग तो सोच के आते हैं कि इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो जो कुर्ता धोती पहन के सफेद सैफरॉन कपड़े पहन के जो घूमते हैं उनसे टकरा टकरा मत जाना, टकरा जाएंगे तो वो लोग पकड़ के अपना नया पाठ सिखाने लगते हैं। शांति से जाओ, भगवान का दर्शन करो, वापिस आओ। कई बार माता पिता इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि इस्कॉन मंदिर जाना तो सावधान होकर जाना, कोई ऐसे लोग सामने नहीं मिलना चाहिए जिसके बाल मुड़े हुए हों या धोती कुर्ता पहने हो, सैफरॉन का कुर्ता पहने हो, मिलोगे तो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दे, क्योंकि उनको लगता है कि भक्त लोग तो ऐसा ही है, सब ऐसे ही है, केवल भगवान से हमें संबंध बनाना है। तो वो एक नियोफाइट स्तर कहलाता है। जब व्यक्ति उससे एडवांस होता है तब वो समझता है कि भगवान के अलावा भक्त भी है, तो वो समझता है ईश्वरेश तदधीनेषु बालिसेषु द्विशतसु, चार कैटेगरीज के लोगों को समझ जाता है कि भगवान उनके अधीन मतलब भगवान के भक्त, बालिसेषु मतलब निर्दोष इनोसेंट, और द्विशतसु मतलब भगवान से ईर्ष्या करने वाले, इन चार कैटेगरी के लोगों को वो समझ जाता है और चारों कैटेगरी के लोगों से उनके आधार पर बात बात बातचीत करता है, उनके आधार पर डील करता है। उसके बाद जब व्यक्ति सबसे उत्तम अधिकारी बन जाता है तो फिर वो सभी को वैष्णव जैसा सोचता है, अपने आप को वैष्णव नहीं सोचता है। वो सोचता है कि मैं भक्त नहीं बन पाया, बाकी सभी लोग भक्त हैं परंतु मैं इतना पतित हूं कि मैं भक्त नहीं बन पाया। ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त बोला जाता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम समझ सकें कि हम कोई बहुत हीरो नहीं है। सामान्यतः जब हम नए भक्ति में आते हैं तो हमें ये जोश होता है कि मैं तो सब सत्य जानता हूँ, मैं इतनी अच्छी फैमिली से हूँ, इतनी कल्चर्ड फैमिली से हूँ। कई बार भारतीय लोगों को भी ये घमंड होता है कि हम तो भारत से हैं, उनको लगता है पाश्चात्य देश वाले जो भक्त हैं ये सब तो पतित लोग हैं, ये तो थोड़ा बहुत कर लिया भक्ति, उछल उछल रहे हैं, कुछ ज्यादा जानते नहीं है। भारतीय लोगों में ये घमंड होता है कई बार, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस घमंड के कारण हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करते। प्रभुपाद जी की कृपा से जो वेस्टर्न भक्त हैं उनको कम से कम ये फीलिंग होती है कि प्रभुपाद जी ने हमें बचा लिया, हम कुछ नहीं जानते थे वो प्रभुपाद ने हमें बचा लिया। कई बार भारतीय भक्तों में ये फीलिंग होती है हम तो पहले से बहुत जानते थे, फैमिली में तो हमने बहुत सीखा था, प्रभुपाद जी तो केवल एक और साधु हैं, पर उनके पहले भी मैं बहुत जानता था। तो वो अपने अपने आप को विनम्र नहीं समझ पाते हैं कि प्रभुपाद हम बहुत जानते थे परंतु हम जो भी जानते थे वो इसी प्रकार से था जैसे सिर पे बोझा हो, वास्तविकता में प्रभुपाद जी ने हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित कराया। तो इसलिए उससे विनम्रता आते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन कौन से हवा में उड़ रहे हैं, क्या जानते हैं हम भक्ति में, ना तो हमने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा है, ना तो हम वैष्णव कल्चर को अच्छे से जानते हैं, तो फिर किस चीज का घमंड होता है। मन के अंदर इस प्रकार से फीलिंग होती है कि मैं एक यूनिक व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, इस प्रकार से फीलिंग माइंड में होती है। तो उस फीलिंग से बचना चाहिए, जितना हम उस फीलिंग से बचेंगे उतना ज्यादा हमारी भक्ति में अच्छा होगा। अदरवाइज अगर कोई विनम्र नहीं है तो उसको हर समय स्ट्रगल फेस करना पड़ता है भक्ति में, उसका स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि ये भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कभी भी हम मिस नहीं करें। एक जगह पे प्रभुपाद जी बोलते थे कि ह्यूमिलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, ह्यूमिलिटी इज द हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो विनम्रता भक्ति का एक हिस्सा नहीं है, विनम्रता भक्ति का हृदय है। जो व्यक्ति विनम्र है उसी की भक्ति आगे बढ़ेगी, अगर विनम्र नहीं है तो वो केवल दिखावट ही बन के भक्ति कर सकता है परंतु भक्ति में वास्तविक प्रोग्रेस उसका नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, समटाइम्स कभी कभी सीनियर वैष्णव जो है जूनियर वैष्णव को सम्मान करते हैं विनम्रता के कारण, और जूनियर वैष्णव को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो सीनियर वैष्णव से भी सम्मान डिजर्व करता है। जब सीनियर वैष्णव जूनियर को सम्मान करते हैं तो जूनियर वैष्णव को बहुत असहज फील करना चाहिए, एम्बरस्ड फील करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उस सम्मान को स्वीकार करें। तो कई बार हमने देखा है कि कुछ सीनियर भक्त आते हैं वो हमें प्रणाम करते हैं या हमें गले से लगाते हैं, तो हम भी उनको गले से लगा लेते हैं अपने दोनों हाथ आगे करके। वो अच्छा नहीं है, जूनियर के केस में अच्छा नहीं है। सीनियर हमारे लेवल पे आके हमें सम्मान कर सकते हैं और हमसे सजेशन भी ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, परंतु जूनियर को ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो अभी मैं कितना एडवांस हो गया, मेरे सीनियर भी आके मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए जूनियर वैष्णव को, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको सीनियर से रिस्पेक्ट प्राप्त करना है। जब कोई सीनियर जब रिस्पेक्ट करता है तो उसको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं इस लायक नहीं हूँ, कृपया आप इस सम्मान को स्वीकार कर लीजिए। हर व्यक्ति को याद होना चाहिए कि उस व्यक्ति का बिजनेस है, उसका कार्य है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था एक्चुअली कि ये जो त्रिनादपि सुनि चेना तदपि सहिष्णु न अमानि न माने देना कीर्तनीय सदा हरि, ये जो श्लोक है इस श्लोक की माला बना के हमें अपने गले में हमेशा रखनी चाहिए। दैट मीन्स हमेशा इस श्लोक को याद करना चाहिए, इस श्लोक के आधार पे कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका कार्य है कि घास से ज्यादा विनम्र बने, वृक्ष से ज्यादा सहनशील बने, अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं रखे और दूसरे को सारा सम्मान प्रदान करे। अगर कोई ये चार गुण के द्वारा गुणी होता है तब फिर वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई करता है, या भगवान का नाम हमेशा जप करने के लिए क्वालिफाई करता है अपने आप को। और अगर कोई इन वैष्णव एटिकेट को ट्रांसग्रेस करेगा, ट्रांसग्रेस मतलब इसका पालन नहीं करेगा या इसको तोड़ देगा, तो ये श्योर है कि उसके आध्यात्मिक जीवन का विनाश होने वाला है। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि कोई भक्त है, किसी सीनियर भक्त का सम्मान नहीं कर रहा है या सामने उनकी बुराई कर रहा है या किसी सन्यासी की बुराई कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि उस भक्त का आध्यात्मिक जीवन डावाडोल होने वाला है। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो आग के समान होते हैं, अगर आप उनको ठीक तरीके से डील नहीं करेंगे तो हम अपने आप का विनाश कर देंगे। तो वैष्णव सदाचार के नियमों को अगर हम तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमारे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। प्रैक्टिकली मैंने देखा कई कुछ कुछ कई कई भक्त थे जो ऐसे भी थे कि सुबह 2 बजे उठ जाते थे, मंगल आरती के पहले 16 माला खत्म कर लेते थे। केवल वैष्णवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखने के कारण आज ऐसा हालत है कि माला भी नहीं कर रहे, माला भी छूट गया। तो इससे समझना चाहिए कि ये वैष्णव सदाचार इतना इम्पोर्टेंट है, उसका पालन नहीं करेंगे तो भक्ति ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, या अगर चलेगा तो सुपरफिशियल चलेगा, भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। हम करते रहेंगे भक्ति परंतु उससे कोई ज्यादा हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इम्पोर्टेंट वस्तु है वैष्णव सदाचार का, क्योंकि अच्छी साधना करने से भौतिक इच्छाएं खत्म होती हैं और अच्छी तरीके से वैष्णव के व्यवहार का पालन करने से ऑफेंसेस अपराध खत्म होते हैं। जब हम बहुत अच्छी साधना करते हैं तो उससे भौतिक इच्छाएं खत्म होती हैं। गुड साधना इरेडिकेट्स मटेरियल डिजायर्स, गुड बिहेवियर इरेडिकेट्स ऑफेंसेस। क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यवहार भक्तों के बीच में ही हो रहा है, तो अगर हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है तो हर भर जिस जब भी खराब व्यवहार होगा किसी न किसी भक्त के लिए अपराध हो जाएगा और वो अपराध हमारे जीवन को खत्म कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी जब दो सीनियर वैष्णवों के बीच में लड़ाई हो या डिसएग्रीमेंट हो तो एक साइड नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि दो सीनियर वैष्णवों के बीच का जो लड़ाई है वो एक प्रकार का पास टाइम जैसा है और हम उसको समझ नहीं सकते, इसलिए हमें कोई भी एक पक्ष को नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। क्योंकि दो सीनियर वैष्णव एक दूसरे के भाई जैसे हैं, जैसे चाचा और पापा में लड़ाई होती है तो अगर बच्चा एक साइड ले ले कि नहीं मैं अपनी पापा की तरफ लूंगा, तो आज लड़ाई हो रहा है कल वो दोनों फिर से गले में हाथ डाल के बैठेंगे, साथ में भोजन लेंगे। इसी प्रकार से वैष्णवों के बीच में हो सकता है कभी कभी कुछ मतभेद हो परंतु बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है। इसलिए जूनियर के लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि वो न्यूट्रल रहे, किसी भी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करे अगर वो देखता है कि दो सीनियर वैष्णवों के बीच में लड़ाई चल रही है। वो एक तरफ जाएगा तो दूसरे वैष्णव के लिए अपराध करेगा और अपने आध्यात्मिक जीवन को वो नष्ट करेगा। और शिष्य को हमेशा अपने गुरु को भगवान के जैसा सम्मान करना चाहिए, और आध्यात्मिक गुरु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान बन गए हैं, और शिष्य को इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए जैसे कि आध्यात्मिक गुरु भगवान के समान है। हालांकि आध्यात्मिक गुरु भगवान नहीं है क्योंकि कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, परंतु जब हम बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु भगवान है, मतलब भगवान के बहुत क्लोज पार्षद है, भगवान के बहुत निकट पार्षद है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को भगवान के जैसा स्वीकार करे, सम्मान करे। और कृष्ण भक्ति के प्रचारक जो हैं उनको निर्दोष लोगों के लिए दयावान होना चाहिए और उन पर कृपा करनी चाहिए, परंतु जो लोग भगवान के लिए ऑफेंडर्स होते हैं, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और जैसे ही आप बात चालू करते हैं उससे, तो वो व्यक्ति भगवान को गाली देने लगता है या भगवान की बुराई करने लगता है, तो हमें या तो उसको डिफीट कर देना चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, नहीं तो फिर उसको उससे आगे बात नहीं करनी चाहिए। अब ऑफेंडर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे जितना बात करेंगे उतना वो भगवान के बारे में गलत गलत बोलेगा, और जितना वो भगवान के बारे में बोलेगा उतना ज्यादा उसका पाप बढ़ता जाएगा। तो अगर हम उसको नहीं सही कर पा रहे हैं तो उससे दूर हट जाना चाहिए, जिससे कम से कम उसका पाप नहीं बढ़े, क्योंकि वो लगातार भगवान के बारे में गलत बोलता जाएगा तो उसका आध्यात्मिक पतन होता रहेगा लगातार। ओके, इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड, ये जस्ट एक सब टॉपिक है, इसके बाद हम अलग अलग इसके सेक्शन चालू करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रभुपाद जी के कुछ कोटेशन हैं लेटर्स में, राय राम प्रभु को जो लेटर लिखा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु को एटिकेट होता है कि आध्यात्मिक गुरु को हिज डिवाइन ग्रेस बोला जाता है, गॉड ब्रदर को हिज ग्रेस बोला जाता है, और कोई भी सन्यासी को हिज होलीनेस बोला जाता है। तो टेक्निकली आध्यात्मिक गुरु को हिज डिवाइन ग्रेस बोला जाता है, परंतु इस्कॉन नियम इस प्रकार से है, इस्कॉन जीबीसी नियम के द्वारा, कि प्रभुपाद के अलावा हम किसी को हिज डिवाइन ग्रेस नहीं बोलते हैं प्रभुपाद के सम्मान के लिए। तो टेक्निकली उसमें कोई समस्या नहीं बोलने में, परंतु ऑर्गेनाइजेशन में हम इस प्रकार से फॉलो करते हैं कि हम प्रभुपाद के अलावा जो भी हैं उनको हम हिज होलीनेस बोलते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस नहीं बोलते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस नाम हमने प्रभुपाद के लिए रिजर्व करके रखा है। तो सामान्यतः सन्यासी को हिज होलीनेस, गुरु को हिज डिवाइन ग्रेस, और गॉड ब्रदर्स को हिज ग्रेस, और जो दीक्षित नहीं है उनको भक्त आगे लगा के बात करते हैं। इसके बाद आता है डीलिंग्स विद गॉड ब्रदर्स। प्रभुपाद जी बता रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्रभु, यू शुड नॉट जस्ट यूज इट मैकेनिकली, यू शुड मीनिंगफुली अप्लाई इट। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, टू कॉल वन अनदर प्रभु इज ऑल राइट बट नॉट टू बिकम प्रभु। एक दूसरे को प्रभु बुलाना अच्छा है, परंतु जब हमें कोई प्रभु बुलाता है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम प्रभु बन गए। हमें अपने आप को हमेशा दास ही सोचना चाहिए, भले ही दूसरा व्यक्ति हमें प्रभु बोल के बुलाता है। दूसरे को अपने प्रभु जैसा स्वीकार करना, स्वयं दास के जैसा रहना, ये आइडिया है। परंतु कोई अगर हमें प्रभु बुला रहा है और हमें प्रभु नहीं बनना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप को प्रभु सोचें, उसको अपना नौकर सोच के उससे व्यवहार करें। अगर हम अपने आप को प्रभु सोच के व्यवहार करेंगे तो नेचुरली हम उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हेमावती मत नहीं, या ये वाला लेटर हेमावती माता जी का था। उसके बाद शिवानंद, प्रभुपाद जी के एक शिष्य का नाम शिवानंद, हमारे शिवानंद प्रभु हैं क्या मीटिंग में? शिवानंद प्रभु के नाम से प्रभुपाद जी का एक शिष्य है, अमेरिकन शिष्य थे, शिवानंद सेन प्रभुपाद ने नाम दिया था उनको। तो प्रभुपाद जी उनको बता रहे हैं, Every man I meet is my superior in some way. In that I learn from him. कि ये actually Emerson बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे मिलता है वो मुझसे superior है किसी न किसी तरह से, और मैं उससे सीख सकता हूँ। इससे related एक story है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको आपको याद है क्या? कुछ लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी। इससे related एक स्टोरी महाभारत में आती है, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच की स्टोरी। उस स्टोरी में दुर्योधन, कृष्ण और युधिष्ठिर होते हैं। किसी को याद है वो स्टोरी, कि अपने आप को सुपीरियर समझना या अपने आप को इंफीरियर समझना? हमने पहले डिस्कस की है, हो सकता है इसी में ही डिस्कस की हो।
यस प्रभु जी, पता है।
ओके, प्रभु जी शायद ऑफिस में है, शायद आशुतोष प्रभु को भी पता है। आशुतोष प्रभु आपको अगर पता है तो बता सकते हैं। अनम्यूट करके बताइए।
ये प्रभु जी, एक बार की बात होती है कि जब ये युद्ध होने वाला होता है तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों आते हैं भगवान के पास, और दोनों अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी शेयर करने आते हैं कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो अर्जुन जो है वो भगवान के चरण कमल के पास जगह लेते हैं, और युधिष्ठिर जो है वो सिरहाने भगवान के बैठते हैं। तो ये थोड़ा जो अप्रोच वो लोग ऐसे करते हैं, तो उससे पता चलता है कि दुर्योधन इक्वल और अपने आप को बड़ा समझता है भगवान से, और अर्जुन जो है वो एज अ हम्बल सर्वेंट पोज करता है।
ओके, गुड स्टोरी। ये भी अच्छी स्टोरी है, पर ये वाली स्टोरी नहीं था जो मैं पूछ रहा था। ये आपने एक नया स्टोरी बताया, मेरे दिमाग में नहीं था ये। तो मैं जो स्टोरी बता रहा था वो स्टोरी ऐसा है, एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि आप जाओ देख के आओ आपसे आपसे अच्छा कौन है। और युधिष्ठिर महाराज से बोला कि आप जाके देख के आओ कि आपसे पतित कौन है, आपसे इन्फीरियर कौन है। तो दुर्योधन से बोला कि आप देख के आओ कि आपसे सुपीरियर कौन है, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर से बोला आप देख के आइए कि आपसे इन्फीरियर कौन है, और दोनों खाली हाथ लौटे, क्योंकि दुर्योधन अपने आप से अपने से बड़ा किसी को ढूंढ नहीं पाया, और युधिष्ठिर अपने से पतित किसी को नहीं ढूंढ पाए, दोनों के दोनों खाली हाथ लौटे। तो ये स्टोरी महाभारत में आता है कि कैसे कभी कभी घमंड के कारण लोग इस प्रकार से रहते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बॉस हूं, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो आइडिया होता है कि हम अपने आप को मालिक मालिक नहीं समझें, अपने आप को सेवक समझें और
प्रभु जी,
से सेवा करें।
दुर्योधन से
यस
सुपीरियर और युधिष्ठिर से इन्फीरियर कौन था? मतलब वो ऐसे
दुर्योधन
चेक करने के लिए या?
चेक करने के लिए, दोनों
अच्छा,
दोनों
ओके
का मन का भाव बताने के लिए भगवान ने बोला था,
ओके।
क्योंकि दुर्योधन अपने आप को इतना बड़ा मानते थे, उनको लगता था कि उनसे बड़ा कोई है नहीं, और युधिष्ठिर इतने विनम्र थे कि उनको लगता था कि मुझसे पतित कोई नहीं है। तो दोनों की क्वालिटीज को सबके सामने बताने के लिए भगवान ने इस प्रकार से वो आदेश दिए। इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना मतलब उनके शिष्यों की भी सेवा करना, अपने गॉड ब्रदर्स की सेवा करना बहुत अच्छा है।
दोनों
आध्यात्मिक
अच्छा
गुरु
था
का
क्या
क्या प्रभु
प्रभु
जी?
जी? सॉरी इंटरप्ट करने के लिए।
हाँ
वो जैसे दुर्योधन का तो बोला कि उसने उससे बड़ा वो किसी को मानता नहीं था, खुद को ही मानता था, तो
हाँ
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन
हाँ
ये भी बोला था कि युधिष्ठिर कि इनसे
हाँ
सुपीरियर कोई नहीं है, और वो अपने आप को पतित मानते थे। तो
हाँ
दुर्योधन का तो समझ में आया, उनका युधिष्ठिर का कैसा है?
नहीं, युधिष्ठिर का अच्छा व्यवहार था, युधिष्ठिर का व्यवहार भगवान ने प्रशंसा किया, दुर्योधन का व्यवहार गलत था। आइडियली युधिष्ठिर का व्यवहार अच्छा था, अपने आप को विनम्र मानना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर तो बोलते हैं कि अगर आप दुनिया, नरोत्तम दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से बोला है एक सॉन्ग में कि यदि कृपा ना करिया पतित देखिया, पतित पावन नाम किसे लागिया, मेरे जैसे पतित को देख के आप कृपा नहीं करेंगे तो फिर आपका नाम पतित पावन क्यों है, वो डिग्री आपको हटा देना चाहिए, पतित पावन नाम आपको खत्म कर देना चाहिए।
ओके
तो वैष्णव हमेशा अपने आप को पतित मानते
ओके
हैं, वैष्णव भगवान को चैलेंज करते हैं, अगर मुझे आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो अपना नाम बदल दो, मैं पतित हूँ आप पतित पावन है। तो पतित पावन होके भी आप अगर पतित को डिलीवर नहीं कर रहे तो फिर आपके पतित पावन होने का क्या मतलब। इस प्रकार से आचार्य लोग भगवान को चैलेंज करते हैं, वो अच्छा चैलेंज है, भगवान भी उस चैलेंज को स्वीकार
युधिष्ठिर
कर लेते
को
हैं।
एक वो भी था कि उनको उनका जो रथ था वो रथ हमेशा जमीन से ऊपर उठा हुआ रहता था, जमीन में नहीं रहता था। वो
हाँ
भी एक स्टेटस
हाँ
इसकी वजह से शायद वो मिला हो, मतलब अपने आप को इतना विनम्र
नहीं वो
मानता था।
एक नहीं उसके पीछे इसका कनेक्शन नहीं
उसका
है,
एक समय में रथ नीचे आया
युधिष्ठिर
जब उन्होंने जब अश्वत्थामा का वध हुआ था
नहीं,
उस
वो
समय
भी
में।
गलत का एजम वो भी गलत एजम्पशन है। युधिष्ठिर का रथ इसलिए नीचे नहीं आया था कि उन्होंने अश्वत्थामा के बारे में झूठ बोला था, उनका रथ इसलिए नीचे आया था क्योंकि उन्होंने भगवान की बात मानने में संकोच किया था। जब भगवान ने बोला कि बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर को थोड़ा समय लगा था उस बात को मानने के लिए। भगवान की बात को अगर डायरेक्टली वो स्वीकार कर लेते तो तुरंत झूठ बोल देते, तो उनका रथ कभी नीचे नहीं आता। ओके तो या आध्यात्मिक गुरु कभी भी अपने फॉलोअर्स के बिना नहीं रहते हैं, इसलिए गुरु की सेवा करना और गुरु के शिष्यों की भी सेवा करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करना मीन्स टू बी द सर्वेंट ऑफ हिज डिसाइपल। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है, तो उपाध लेटर टू कीर्तनानंद। उस समय तैतरीय प्रभु थे, ये लेटर एक्चुअली कीर्तनानंद महाराज जब न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट में थे तो वहां पे एक भक्त थे, उन्होंने अपने गॉड ब्रदर को अपने सर्वेंट के जैसा रखा था, तो उनके लिए प्रभुपाद डांट रहे हैं कि तैतरीय का सर्वेंट क्यों होना चाहिए, उनको किसी और को अपना सेवक क्यों रखना चाहिए। जो गॉड ब्रदर्स हैं वो एक दूसरे के सर्वेंट नहीं होते हैं। अगर आध्यात्मिक गुरु ने आदेश नहीं दिया है तो कोई भी व्यक्ति अपने गॉड ब्रदर को अपने पर्सनल सर्वेंट जैसा नहीं रख सकते हैं। ये हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार में भी देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो गॉड ब्रदर थे गोविंद, वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया था। फिर गोविंद ने बोला था कि आपके गुरु ईश्वरपुरी ने मुझे भेजा है आपके पास आपकी सेवा करने के लिए। तो जब गुरु का आदेश मिला था तब उन्होंने सेवा स्वीकार किया था। इसलिए बिना गुरु के आदेश पे हम अपने गॉड ब्रदर्स को अपने सर्वेंट के जैसा नहीं रख सकते, उनसे सेवा नहीं ले सकते। जब हम एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं तो प्रभु को अपनी सेवा में कैसे लगा सकते हैं? अगर कभी ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसा बोलें कि ए प्रभु आप आके मेरे पैर दबा दो, आप आके मेरे जूते साफ करो, तो फिर प्रभु बोलने का मतलब क्या है? अगर हम प्रभु बोल रहे हैं तो हम उनके नौकर हैं और हम प्रभु बोल के उनको ही अपनी सेवा में लगा रहे, तो फिर प्रभु बोलने का क्या मतलब है? वो पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया भी है, चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद दास को अपनी सेवा में लगाया जो कि उनके गॉड ब्रदर थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने आदेश दिया था तब उन्होंने लगाया। इसके बाद आता है श्री प्रभुपाद लेटर टू जनार्दन। जनार्दन प्रभु इस्कॉन के बिगनिंग के बहुत सिंसियर भक्त थे और बहुत जल्दी उनका देह त्याग भी हो गया था, 1969-70 में उन्होंने देह त्याग कर दिया था। उनको ये प्रभुपाद जी लेटर में बता रहे हैं कि आपके गॉड ब्रदर्स आपके छोटे भाई के जैसे हैं, तो उनको अपने छोटे भाई जैसा स्वीकार करिए, उसी तरह से उनसे व्यवहार करिए और प्रयास करिए कि उनको कृष्ण भक्ति में कैसे आगे लाया जाए। जितना हम प्रयास करेंगे उतना भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जानकी माता जी को प्रभुपाद ने लेटर लिखा है कि हम अपने क्रियाकलापों को इस प्रकार से करिए कि आपके बीच में जो शांतिपूर्ण संबंध है उसका उसमें कोई बाधा नहीं आए, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ पीसफुल एटीट्यूड अमंगस्ट योरसेल्फ। उस जानकी माता जी और लंदन का ये लेटर है, लंदन में भेजा था प्रभुपाद ने। तो लंदन जब नया मंदिर बना था तो भक्तों के बीच में कुछ कुछ मतभेद हो रहे थे, तो उस समय प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा था। भक्तों मतलब स्पेशली माता जी के बीच में, तो जानकी माता जी वहां पे सीनियर डिसाइपल थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था कि हम इस मूवमेंट को इसलिए पुश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पूरी दुनिया में कि हम ये मूवमेंट पूरी दुनिया में शांति लेके आएगा, परंतु अगर हमारे भक्तों के बीच में ही लड़ाई होती रहेगी तो फिर हम कैसे बताएंगे दुनिया को कि इस मूवमेंट को एक्सेप्ट करने से दुनिया में शांति होगी। बात भी सही है, अगर इस्कॉन के भक्ति एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, बाहर जाके हम बोलेंगे कि आप कृष्ण भक्ति स्वीकार करो तो पूरा संसार शांत हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे आप खुद ही शांत नहीं हो, खुद में लड़ाई होती रहती है और हमें आके बोल रहे हो कि पूरा संसार शांत हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जब लोगों से प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से शांति आता है तो हमें उसका एग्जाम्पल भी सेट करना होगा, नहीं करेंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है प्रभुपाद लेटर, प्रभुपाद जी का लेटर गर्ग मुनि प्रभु के लिए। प्रभुपाद जी गर्ग मुनि प्रभु को गर्ग मनी भी बोलते थे क्योंकि इस्कॉन की हिस्ट्री के सबसे बड़े फंड रेजर है, उनको प्रभुपाद जी गर्ग मनी बोलते थे। तो गर्ग मुनि प्रभु को बोलते हैं सेम इंस्ट्रक्शन कि आप भाइयों के बीच में लड़ाई बंद कर दो, नहीं तो हमारा सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप तमाल कृष्ण ब्रह्मानंद सत स्वरूप, आप सबको मिलजुट के एक कार्य करना चाहिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। धीरे धीरे भगवान कृष्ण की कृपा से हम एक्सपेंड कर रहे हैं और अगर हमारे बीच में लड़ाई होती रहेगी तो ये बहुत डेंजरस है। तो जब भी भक्तों के बीच में लड़ाई होती है उसका मतलब है कि कलयुग का अटैक हो रहा है, क्योंकि कलयुग इस्कॉन को भक्तों के समाज को बाहर से खत्म नहीं कर सकता है। कलयुग केवल तभी इस्कॉन को डेंजर पहुंचा सकता है जब भक्तों के बीच में लड़ाई करवाएगा। इसलिए जब भी हमारे किसी से लड़ाई होती है समझना चाहिए कि कलयुग ने अटैक किया है, क्योंकि इस्कॉन को बाहर से खत्म नहीं किया जा सकता। बाहर से जितना भी अटैक होगा इस्कॉन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, परंतु अगर अंदर भक्तों के बीच में लड़ाई चालू हो गई तो फिर इस्कॉन संस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि किसी भी हालत में हमें कलयुग को इस्कॉन के अंदर नहीं आने देना है, भक्तों के बीच में फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला लेटर ब्रह्मानंद प्रभु के लिए लिख रहे हैं कि ये वैकुंठ का स्वभाव है, वैकुंठ में किसी में कोई गलती नहीं होती है, परंतु दूसरे तरीके का कॉम्पिटिशन वहां पाया जाता है। कॉम्पिटिशन है कि एक भक्त सोचता है कि दूसरे भक्त कितने अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं। भौतिक संसार में ये एटीट्यूड है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे अच्छे से सेवा कर रहा हूँ, इसको भौतिक संसार बोला जाता है। आध्यात्मिक संसार में एकदम अपोजिट है, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ वाला भक्त कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, परंतु मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा। तो ये आध्यात्मिक माहौल है, ये वैकुंठ एटीट्यूड है। कई बार हम आते हैं इस्कॉन में आते हैं तब भी हमें ये एटीट्यूड नहीं दिखता है। हम मंदिर में भी आते हैं रहते हैं तो भी कुंठा लगी रहती है। कई बार सोचने में लगता है कि सुना तो था कि इस्कॉन में आने के बाद वैकुंठ में आ जाते हैं, ये वैकुंठ की जगह पे कुंठा में आ गए। तो वो कुंठा किस लिए होती है? क्योंकि हम प्रॉपर एटीट्यूड नहीं फॉलो कर पाते हैं। इसलिए भक्तों के बीच में रहने के बाद भी हमें समस्या होने लगती है। तो वैकुंठ में रह के भी हम कुंठ में रहते हैं, प्रैक्टिकली इस्कॉन मंदिर वैकुंठ कहलाते हैं, परंतु वैकुंठ एटीट्यूड नहीं होता है। इसलिए हम ये वाला ये एटीट्यूड जो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं वो एटीट्यूड नहीं होता है, इसलिए हम उसको ठीक तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते।
प्रभु जी एक बात बोलना था।
प्रभु जी क्लास आप अगर क्वेश्चन आप लिख के रखेंगे तो अच्छा है, क्लास के बाद एक साथ अच्छा, पूछ
जी,
सकते हैं।
जी।
ब्रह्मानंद प्रभु को प्रभुपाद उपेंद्र प्रभु को प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता है कि कोई गृहस्थ या सन्यासी है, मेन पॉइंट है परमहंस बनना चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए पूरी तरह से सरेंडर होना चाहिए, ये हमारा मेन पॉइंट है। इसके बाद प्रभुपाद लीलामृत का एक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सभी मटेरियल डेजिग्नेशन है। हमारे कृष्ण भक्ति मूवमेंट इन सभी भौतिक क्रियाकलापों से दिव्य है, और ये फॉरेनर्स जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं इन सबको ये सिखाया जा रहा है। इसके बाद प्रभुपाद जी ने अगला लेटर लिखा है, जब हस्बैंड और वाइफ भक्त होते हैं तो उनके बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये पिक्चर बहुत अच्छा है, इस पिक्चर का एक टाइटल है बिटवीन एवरी कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल, पति पत्नी के बीच में राधा कृष्ण को होना चाहिए, तब उनके बीच में मैरिज लाइफ अच्छे से चल पाएगी। बिटवीन एवरी कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल, तब आइडियल मैरिज होता है, नहीं तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ ये जान के कि आपकी पत्नी आपको मदद कर रही है, ये पत्नी का कार्य होता है, कर्तव्य होता है। अगर पत्नी हमें आध्यात्मिक प्रोग्रेस में मदद करती है तो वो हमारे सबसे अच्छी मित्र और फिलोसोफर है, दार्शनिक है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में पत्नी कभी भी एक बोझ नहीं होती है, पत्नी कभी भी बर्डन नहीं होती है, पत्नी पति को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से मदद करती है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपको अभी ये एग्जाम्पल सेट करना है अमेरिकन्स के सामने कि कैसे आप लोग पीसफुली शांति से रह सकते हैं, पति पत्नी शांति से रह सकते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रह। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारी संस्था में अलग अलग मंदिरों में पति पत्नी भगवान की सेवा में अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा एग्जाम्पल संसार के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो कृष्णा कॉन्सियसनेस में गृहस्थ आश्रम कभी भी उसको डिस्करेज नहीं किया जाता है। अगर पति पत्नी दोनों कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं मिलजुट के, तो प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा था कि अगर हमारी पत्नी कृष्ण भक्त है और हम भी कृष्ण भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो फिर संन्यास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा कर सकते हैं। वृंदावन चंद प्रभु को प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा। इसके बाद प्रभुपाद जी का मधु द्विज प्रभु के लिए लेटर है कि गुरु के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करने के मार्ग में मैंने आपको लिखा था कि ऐसी प्रार्थनाएं ठीक हैं, हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे हमें भक्ति में वृद्धि प्राप्त हो, और ऐसी प्रार्थनाएं भगवान को डायरेक्टली नहीं करते हैं, गुरु के द्वारा भगवान को सबमिट करते हैं। तो जो भी हमें आध्यात्मिक इच्छा है, भक्ति में प्रोग्रेस की जो भी इच्छाएं हैं, वो आध्यात्मिक गुरु से हमें प्रार्थना करना चाहिए, और गुरु भगवान को उसके बारे में प्रार्थना करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं आपको चेस्टाइज करता हूं क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। डिसाइपल का मतलब ही होता है उसको डिसिप्लिन, अनुशासन में रखना चाहिए। इसलिए ये मेरा अपने शिष्यों के लिए ये ड्यूटी है। अदरवाइज मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं ये केवल आपको डिसिप्लिन करने के लिए करता हूँ क्योंकि आप मेरे डिसाइपल्स। ये हमने देखा है कि प्रभुपाद नाराज होते थे और फिर तुरंत प्रभुपाद भूल भी जाते थे, कुछ ही क्षणों में भूल जाते थे। दैट मीन्स प्रभुपाद की नाराजगी ऐसे नहीं थे कि रजोगुण के कारण थी। सामान्यतः हमें गुस्सा आता है रजोगुण के कारण, परंतु प्रभुपाद का गुस्सा रजोगुण के कारण नहीं होता था। प्रभुपाद का गुस्सा होता था, उस गुस्से को भगवान की सेवा में यूज करते थे, शिष्य को सही करने में यूज करते थे। तो प्रभुपाद नाराज होते थे फिर खुश हो जाते थे, भूल जाते थे। इसके बाद प्रभुपाद का अगला है कि हो सकता यू मे बी अफ्रेड ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर, बट दैट डज नॉट मीन यू शुडंट कम एंड सी हिम। आई विल ड्रैग यू टू कम एंड सी मी। एक शिष्य थे, वो डरते थे प्रभुपाद से, बहुत डरते थे। तो प्रभुपाद उनको बता रहे हैं कि ठीक है, डरना अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं कि मिलने ही नहीं आओ, मैं आपको खींच के लेके आऊंगा। इसके बाद अगला है कि डिसाइपल को कभी भी गुरु को इंस्ट्रक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी और रामचंद्रपुरी का ये उदाहरण आ रहा है कि रामचंद्र, जब माधवेंद्रपुरी रो रहे थे तो रामचंद्रपुरी उनको एडवाइस करने का प्रयास करते थे, ऐसा करने से उन्होंने अपराध किया। इसलिए शिष्य को कभी भी गुरु को इंस्ट्रक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत सारे बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीक करना है। या इसके आगे हम नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ तक हमने किया 14 नंबर पेज तक कंप्लीट किया है। डिसाइपल्स शुड नॉट ट्राई टू इंस्ट्रक्ट देयर स्पिरिचुअल मास्टर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और ये कोटेशंस खत्म होने के बाद फिर एक एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप आता है, गुरु के साथ रिलेशनशिप, सीनियर वैष्णव के साथ, इक्वल्स के साथ, जूनियर के साथ, वो एक अलग अलग चैप्टर है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम वो करेंगे। यस प्रभु, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
यस प्रभु जी, अभी आपने एक पॉइंट बोला था, लाइक भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल। तो प्रोफेशनल में एक ये होता है कि सभी लोग अपने आप को बेस्ट मानते हैं एंड मतलब वो भी मानते हैं, और कॉम्पिटिटिव एज इतना ज्यादा होता है उसकी वजह से, और उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, मतलब मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है, ऐसा होता है। तो मतलब प्रोफेशनल तो जरूरी है क्योंकि वहां पर काम करना है, वर्क एरिया है, तो वहां पर ये चीज कैसे लेके आए? मतलब ये बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन ये आध्यात्मिक वाला मैं सबसे अच्छा हूँ, आदमी सीधा साधा भी रहेगा तो सीधा साधा रहना मतलब वो वहां पर जाके बेवकूफ माना जाता है, इसको कुछ आता नहीं है, ये बेवकूफ है जबकि वो काम करता है।
नहीं, एक एक्चुअली एक थोड़ा इनकम्पेटिबल आइडिया है कि ह्यूमिलिटी मतलब सीधा साधा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप बताइए, हनुमान जी हम्बल थे कि नहीं? हनुमान जी तो उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा क्या? राक्षसों को नहीं मारा? वहां जाके ऐसे ऐसे तो खड़े नहीं हो जाते थे कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो सबसे गिरा हुआ हूँ। तो ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एकदम ही ढीले ढाले से खड़े रहे। अर्जुन, अर्जुन विनम्र थे कि नहीं? अर्जुन भी विनम्र थे ना, महाभारत का युद्ध लड़ा उन्होंने। हनुमान जी तो लंका जला के आए। तो हमें अंदर से हमें विनम्र रहना है, ये जानना है, परंतु अगर कोई हमें दिख रहा है कि कोई व्यक्ति हमारा फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है तो उसको हम सिखा सकते हैं, परंतु अंदर से घमंड होना हमेशा खराब है कि हम बेस्ट हैं। वो हमेशा अगर हम ये सोचेंगे कि मटेरियल फील्ड में हम सोचेंगे हम बेस्ट हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम सोचेंगे कि हम लोएस्ट हैं, तो वो होगा नहीं, क्योंकि हम दो पर्सनैलिटी बन के नहीं रह सकते। तो हमें विनम्र तो बनना ही होगा, परंतु जब हम देख रहे हैं कि कोई हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम उसको उस तरह से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओके।
एक और था, थोड़ा सा ईगो और सेल्फ एस्टीम, इसके बारे में थोड़ा मतलब समझाएंगे।
सेल्फ का
अगर अभी टाइम हो, नहीं तो बाद में भी।
नहीं नहीं, अब सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या होता है?
सेल्फ मतलब खुद, स्व।
वो खुद है कौन?
खुद हम।
हम कौन है? हम कौन है?
मैं,
आई। नहीं, हम है कौन? हम शरीर है कि आत्मा है?
आत्मा है।
तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होगा? सेल्फ एस्टीम का मतलब होगा कि हम अपनी स्थिति को पहचाने कि हम भगवान के दास हैं, उसको सेल्फ एस्टीम बोला जाता है, कि हमारी वास्तविक स्थिति को पहचाने। अगर हम अपने आप को शरीर सोच रहे तो सेल्फ एस्टीम शब्द ही गलत है, तो उस शब्द का मीनिंग ही हमें नहीं पता है। तो सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मा का जो ग्लोरी है, आत्मा का जो भगवान से संबंध है वो सेल्फ एस्टीम कहलाता है। जो हम भगवान के दास हैं उस स्वभाव में रहेंगे तो सेल्फ एस्टीम कहलाता है। सेम चीज ईगो का भी है। ईगो ईगो मतलब एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है रियल ईगो। तो रियल ईगो है कि हम कृष्ण के दास हैं, और फॉल्स ईगो है कि हम सबके मालिक हैं। तो रियल ईगो में हमें आना है,
कृष्ण का दास।
रियल ईगो मतलब कृष्ण के दास हैं, और फॉल्स ईगो मतलब कि हम मालिक हैं और शरीर हैं। तो हमें फॉल्स ईगो से खत्म करके रियल ईगो में आना है।
मतलब ईगो होना चाहिए।
हाँ ईगो तो रहेगा ही ना, ईगो मतलब एग्जिस्टेंस, ईगो कैसे नहीं रहेगा। रियल ईगो होना चाहिए कि हम आत्मा है और भगवान कृष्ण के दास है।
Either of the two things, either self esteem होना चाहिए या फिर ego होना चाहिए। Self esteem is better than ego. Ego destroys. This is what I know. Maybe my perception can be changed.
नहीं, जो ईगो की हम बात करते हैं वो हमेशा फॉल्स ईगो होता है इस संसार में। जो भी नॉवेल्स में मूवीज में ईगो ईगो आता है ना, वो अकेला ईगो नहीं है, फॉल्स ईगो है। क्योंकि वो किस पे आधारित है, शरीर पे आधारित है कि आत्मा पे, आप बताइए। जो बहुत सारे लोग ईगो की बात करते हैं, कौन सी ईगो की बात करते हैं, शरीर की कि आत्मा की? उनको आत्मा तो पता ही नहीं है, शरीर की बात करते हैं तो वो फॉल्स
ईगो। कैसे पहचानेंगे कि वो शरीर की बात कर रहे हैं या आत्मा की बात कर रहे हैं? उतना इनडेप्थ एनालिसिस करने का टाइम कहाँ है?
किसका इनडेप्थ एनालिसिस?
मतलब वो मतलब जैसे ईगो की बात करते हैं तो
कौन से ईगो की बात करते हैं? किसका इनडेप्थ एनालिसिस करना
है? सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि इसका ईगो है, ऐसी बातें भी होती हैं।
तो पता ही नहीं है ना कि भक्ति क्या कहलाती है। उसको जब यही नहीं पता कि हम आत्मा है तो उसको ईगो का, उसको फॉल्स ईगो रियल ईगो क्या पता होगा। आदमी संसार में कितने लोगों को पता है कि हम आत्मा है, कितने लोग आत्मा के हिसाब से काम करते हैं? हमें पता है, हमने गीता पढ़ा है इतनी बार, तब भी हम काम नहीं कर पा रहे, तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं इतने सालों से। तो जिसने नहीं पढ़ा है उसको क्या पता, वो तो फॉल्स ईगो ही समझेगा। तो फॉल्स ईगो गलत है, रियल ईगो ठीक है। शास्त्र जो बोलते हैं रियल ईगो बोलते हैं, आत्मा का रियल स्वभाव जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास हमारा स्वभाव है और वो रियल ईगो है, वो होना चाहिए। ईगो को खत्म नहीं किया जा सकता है, फॉल्स ईगो को खत्म किया
ये,
जाता है।
ये मैं पॉइंट इसलिए रेज कर रहा हूँ, मैं जहाँ पर काम करता हूँ मतलब मीटिंग वगैरह होता है तो वहां पर भी इनडायरेक्टली बोलता है, डायरेक्टली नहीं, पॉइंट आउट नहीं है कि मेरे लिए, बट आई टेक इट ऑन माई सेल्फ दैट ऐसी बात होती है कि ये ऐसा ईगो है, ये है, तो आई टेक इट ऑन माई सेल्फ कि यार मेरे में ईगो है। ईगो मतलब मैं ऐसा, मेरा ये है कि मेरा डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मेरे को जो भी मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट करना है वो मैं करूंगा, मेरी तरफ से कोई मतलब लूप होल नहीं होना चाहिए।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको ईगो बोलते हैं तो आपका डेफिनेशन गलत है ईगो का। आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, इसको जिम्मेदारी बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ईगो नहीं बोला जाता है। ईगो के साथ ही इनसेंसिटिविटी आती है, ईगो के साथ एरोगेंस आता है। जो फॉल्स ईगो होता है ना उसके साथ एरोगेंस और इनसेंसिटिविटी आता है। जबकि आपने जो बात किया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ईगो एक नेगेटिव चीज, फॉल्स ईगो जो है वो नेगेटिव चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव चीज है। और जो भी आपकी कंपनी में है उनसे पूछ के देखिए उनका ईगो का क्या कंसेप्शन है। उनको पता ही नहीं कि आत्मा क्या कहलाता है, तो उनके लिए ईगो कुछ पता ही नहीं होता है। उनके लिए ईगो मतलब फॉल्स ईगो, जबकि वैदिक शास्त्र रियल ईगो पे कार्य करते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक संबंध पे कार्य करते हैं। ओके हर्षल प्रभु आपने हाथ उठाया था।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।
यस प्रभु,
कई बार प्रभु जी मैंने ऑब्जर्व किया है कि
क्या सब्जेक्ट है,
हाँ बताइए,
इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए।
हर्षल प्रभु
जी, प्रभु
यस पूछे
कि कई बार ऑब्जर्व किया कि जो कभी कभी बहुत टाइम से माला करते हैं ना प्रभु जी, वो भी ऐसा मानते हैं कि सेवा ये सेवा मैंने करी, मतलब ऐसा क्रेडिट लेते हैं और बिलीफ उनका ऐसा होता है कि ये मैं कर रहा हूँ, तो वो हम्बलनेस नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि कोई नए भक्त आते हैं ना, वो सोलह माला करते तो तुरंत वो बिलीफ चेंज हो जाता है। दोनों सोलह माला तो कर रहे, तो बिलीफ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया?
एक्चुअली वो इंडिविजुअल देखना होगा, ऐसा जनरलाइज नहीं बोल सकते कि किसका क्या है। क्योंकि कई बार भक्त भक्त लोग सेवा करते हैं और खुशी से बताते हैं कि हमने भगवान के लिए कुछ सेवा किया, तो उसमें हो सकता है ईगो नहीं भी हो, फॉल्स ईगो नहीं हो, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने में खुशी महसूस करते हैं, तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं और लोगों को बताते हैं कि आज मैंने भगवान का सेवा किया। तो नेसेसरी नहीं कि वो ईगो के कारण बता रहे हो। तो वो इंडिविजुअल जब देखना पड़ेगा हर व्यक्ति को, स्वभाव से पता चल जाता है देखने के बाद, ऐसे जनरलाइज नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली क्या होगा।
कभी कभी बार ऐसा भी होता है, बाहर से व्यक्ति भी नम्र हो पर अंदर से ऐसा मानता हो कि मैं कुछ नहीं हूँ।
हाँ तो अंदर तो भगवान है ही ऑलरेडी ना, अंदर तो भगवान देख ही रहे किसके अंदर क्या है, भगवान से क्या छुपेगा।
और दूसरा आपने ऐसा बताया कि हमारी जो इच्छा होती है वो हमें स्पिरिचुअल मास्टर से कम उनके द्वारा फिर भगवान को बिदन, ऐसा क्यों हम डायरेक्ट भगवान?
हाँ क्योंकि हमारे हम इतने पतित है ना कि हमारी कोई औकात नहीं भगवान को अप्रोच करने की, और भगवान ने नियम बनाया है कि गुरु के द्वारा उनके पास जाते हैं। जब हम गुरु के ऊपर शुद्ध भक्तों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तब भगवान हमें स्वीकार करते हैं। वही तो मैंने अंतर बताया कि जो नए भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मैं भगवान से डायरेक्टली बात करूंगा। परंतु जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, पहले मुझे भक्तों की सेवा करनी चाहिए उसके बाद तो भगवान के पास जाऊंगा, तब उसका एडवांसमेंट होता है और उस तरह से धीमे धीमे वो एडवांस करता है। ओके देवेंद्र गौर प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु।
यस प्रभु।
हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारा नाम होता है तो नाम के पीछे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हमारे जो गुरु होते हैं उनका नाम लिखते हैं, तो ये हमारे दूसरे जो ब्रदर्स है तो ये उनके प्रति एक अपराध होता है, या मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि ये एक थोड़ा सा ईगो जैसा भी लगता है, या कैसे इसको कैसे लेना चाहिए?
नाम के पीछे मतलब किस तरह से, जब हम नाम लिखते हैं तो गुरु के नाम का ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ऐसा?
हाँ जैसे मेरा नाम है तो मेरे नाम के बाद फिर मैं गुरु का कोई शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ।
हाँ
तो ये चीज सही है या गलत है? बिकॉज ये ऐसा भी लग सकता है ना कि मतलब एक ईगो हो जाता है कि भाई मैंने इनसे दीक्षा ली है, मैं इनका मतलब डिसाइपल हूँ, तो ये दूसरे
हाँ हाँ बताइए बताइए क्या बोल रहे दूसरे।
ये एक दूसरे जैसे हमारे ब्रदर है, दूसरे अगर किसी अब प्रभुपाद के जो शिष्य है तो उनके प्रति ये अपराध हो सकता है?
नहीं ऐसे जनरली
मैं अभी हाँ। एक गुरु का मतलब मैं शिष्य हूँ और दूसरे गुरु के कोई शिष्य है तो उनके प्रति ये भाव हो सकता है नहीं कि भाई ओहो ये तो इनके है हाँ। ये तो इनके है, तो ये जैसा हो सकता है क्या है?
अगर वैसा भाव आता है, अगर वैसा भाव आता है तो गलत है, फिर उस तरह से भाव नहीं होना चाहिए। अगर वैसा भाव अंदर आ रहा है तो गलत है, क्योंकि एक्चुअली और उसके लिए हमें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए कि रिलेशनशिप हमेशा कॉमन प्लेटफॉर्म पर बनता है। जैसे अगर हमें पूरी दुनिया से रिलेशनशिप बनाना है तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, पूरी की पूरी दुनिया भगवान के अंश है, सारे जीव भगवान के अंश है, तो सभी से रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर हमें सारे मनुष्यों से रिलेशनशिप बनाना है तो हमें देखना होगा कि सभी मनुष्य प्रजाति में है, तब हम उनसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। मनुष्यों के बीच में हम अगर सभी साधुओं से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे वो मायावादी हो कोई भी हो, सम्मान करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अलग बात है, सम्मान करना चाहते हैं, तो हम ये कॉमन लिंक ढूंढ सकते हैं कि एटलीस्ट ये लोग अध्यात्म में जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर हम सभी वैष्णवों से संबंध बनाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट ये सभी चार संप्रदाय में है तो सभी लोग प्रामाणिक वैष्णव हैं। अगर हम सभी गौड़ी वैष्णव से संबंध बना सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उसके लिए कॉमन लिंक है, सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। और अगर हम सभी इस्कॉन के भक्तों से संबंध बनाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि सभी प्रभुपाद के फॉलोअर हैं। परंतु उससे कम अगर हम लेके आएंगे कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं तो फिर इस्कॉन के अंदर डिवीजन आने का चांस है, इसलिए बेटर है उससे बचना चाहिए। हम अपने जो ऑफिशियल चीजों हैं उसमें प्रभुपाद को ही फोकस करें, जिससे कि पूरी संस्था के सारे भक्तों को हम एक साथ ला सकें, उन सबसे हम संबंध बना सकें। क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ डिवीजन आ जाता है कि देख ये मेरे गॉड ब्रदर हैं, ये मेरे गॉड ब्रदर नहीं है, तो वैसा करना अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि इस्कॉन के अंदर हम प्रभुपाद को फोकस करें, जिससे कि हम पूरे इस्कॉन के भक्त चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो सबसे संबंध बना सके। प्रभुपाद जो है वो कॉमन प्लेटफॉर्म है इस्कॉन के लिए, तो उनपे आधारित अगर संबंध होगा तो फिर सभी से संबंध बनाया जा सकता है। ओके आपको आंसर मिल गया प्रभु
जी? प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्ण।
शिवानंद प्रभु।
हरे कृष्ण प्रणाम।
यस प्रभु।
प्रभु मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे हमारे साथ
में कोई व्यक्ति कोई ड्योति है या साथ साथ वाला इक्वलाइजर कह सकते हैं या जूनियर कह सकते हैं, मतलब साथ में भी रहते हैं और डील दोनों ही तरीके से हम करते हैं उनके साथ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ गलती कर रहा है अगर वो, कि हाँ मतलब जो सही नहीं है उनके लिए, तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी हम लाइक हमारे जो इक्वलाइजर या फिर जो दूसरे हमारे जो साथ उठने बैठने, हम ऐसा मतलब बातचीत कहीं ना कहीं ऐसा जाने अनजाने में या किसी दूसरे टॉपिक से वो कभी बात छिड़ गई और डिस्कशन होना शुरू हो जाता है, अच्छा वो प्रभु तो ऐसे हैं, ये प्रभु तो ऐसे हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, ये गलत है। तो फिर मतलब क्योंकि सीधी सी बात है, या तो हमें हमें अगर ऑथोरिटी हो तो हम कह सकते हैं, बट अगर हमें ऑथोरिटी नहीं है तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम देख रहे थे क्योंकि हमारा तो डिस्कशन करना ही पहली बार गलत है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए।
पहले गांव में चौपाल रहते थे, एक चबूतरा रहता था, उसमें सब लोग शाम को आके बैठते थे और सब यही बात करते थे कहाँ पे कौन क्या गलत कर रहा है, किसके घर में क्या हो गया, उसकी लड़की भाग गई, उसके लड़के ने ये किया। ऐसे ही आजकल लोग इस तरह का चौपाल पे बैठ कर बात करते हैं, अरे नरेंद्र मोदी ने ये गलती कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए था, मैं अगर होता तो ये कर देता। तो ये सब बातें प्रिजल्प में आती हैं जिसपे हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सबसे पहले तो जो जिस बात पे हमारा नियंत्रण नहीं है उस बात को करने की जरूरत नहीं। और अगर आप चीजों को सुधारना चाहते हैं तो जो व्यक्ति वहां पे अथॉरिटी है उसको जाके बताइए कि ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, आप उसको वो इसको सही करेंगे, हमें अपने हाथ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। और विशेष रूप से उसको सबके सामने डिस्कस करने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों को कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा मजा आता है। आप देखोगे कोई लेक्चर देगा, कोई अच्छी बात बताएगा तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे, परंतु रोड पे आप देखो चलते चलते अगर दो कार वालों में या दो बाइक वालों में लड़ाई हो जाती है तो चारों तरफ एकदम जैसे चींटियां घोड़े के सामने आ जाती है ना, पूरा रोड भर जाता है, लोग अपनी अपनी कार रोक रोक के खड़े हो जाते हैं कि कुछ लड़ाई चल रहा है, चल के देखना चाहिए। तो लोगों का नेचर है कलयुग में कि उनको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो सब चीजें नहीं बढ़ाना चाहिए। भक्तों के बीच में अगर हम बात करेंगे तो लोग वही सब ढूंढते हुए आएंगे, इसलिए जो मैटर है जो अथॉरिटी उसको बता के खत्म कर देंगे, सबको बताने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, मैंने लंबा समय ले लिया,
थैंक यू,
उसके 5 मिनट हो गया। तो आप सभी को शायद पता होगा संडे जो भगवत गीता क्लास संडे वाली होती है वो मैं इसी टाइम पे मैंने शिफ्ट कर दी है, 8 बजे, 11:30 बजे जो होती थी उसको मैंने 8 बजे शिफ्ट कर दिया है। तो कल इसी टाइम पे भगवत गीता क्लास होगी और 7वां अध्याय चालू होना है कल, 6वां अध्याय कम्प्लीट हो गया था, 7th चैप्टर कल स्टार्ट होगा उसका। ओके कल मिलते हैं फिर शाम को 8 बजे जगत गुरु शिल्प।